ये ऑल इंडिया रेडियो नहीं है, ये जहन की आवाज है। काउंटडाउन नहीं है ये कोई। हारमोनियम की कीज की तरह कुछ गाने काले सफेद से मेरे अंदर बैठ गए हैं। यूं लगता है कि सांसों की आवाजाही पर ये तरंगित हो उठते हैं। कभी काली पट्टी दब जाती है, कभी सफेद। इन गानों को याद करना नहीं पड़ता, बस उन पट्टियों को छेड़ना भर पड़ता है। संगीत से मोहब्बत करने वाले ये मानेंगे कि उन्होंने अपने जीवन की हर अवस्था, हर खुशी के लम्हे, उदासी के हर पल, सरल या कठिन समय को संगीत के साथ साझा किया है। ये गाने उनके स्मृति पटल पर इस तरह से छाया हैं कि जैसे कि ये गाने कानों में पड़ते हैं, वो तत्क्षण जीवन के उन पलों को दोबारा जीने लग जाते हैं। आज एक गाना बजा कहीं भीतर और मेरे जीवन के किशोरावस्था के दिनों की एक लहर सी उठाई और मैंने सोचा कि गुजरे दिनों की तरह ही अपने लिए एक जादुई शाम चुरा ली जाए। ये एक परिपक्व आवाज मेरे ऊपर तिरती रहे, जिसने पिछले कई सालों से पूरी दुनिया में लाखों लोगों को अपना दीवाना बना रखा है और जो मुझे हमेशा ही ख्वाबों की एक दूसरी ही दुनिया में ले जाती रही है।
तो बसो मेरी आँखों में, फिर ख्वाब अगर हो जाओ तो क्या।
गजल मुझे हमेशा से आकृष्ट करती रही है, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि मैं गुलाम अली की बहुत बड़ी प्रशंसक रही हूँ। प्रेम की मीठी पीड़ा को अभिव्यक्त करने के निराले अंदाज की वजह से उनकी गजलें सुनने वाले को सम्मोहित सा कर लेती हैं, उन्मत्त बना देती हैं। समय के थपेड़े भी गुलाम अली की गजलों का असर कम नहीं कर पाए, बल्कि समय बीतते बीतते पुरानी शराब की तरह ये अमूल्य और नशावर होती जा रही है। एक बेहद सौम्य चेहरे पर सदाबहार मुस्कान के साथ गुलाम अली की आवाज उनकी हर गजल में आपको अपनी तरफ खींचती है।
मस्ताना पिए जायूं ही, मस्ताना पिए जा।
उनकी अदायगी में इतना कन्विक्शन है कि शराब ना पीने वाले भी एक तरह की खुमारी में आ जाते हैं। ये नशा और भी बढ़ जाता है जब उस्ताद गुलाम अली साहब अपनी आवाज की लर्जिशों से एक हंगामा सा बरपा देते हैं।
हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है।
अकबर इलाहाबादी की इस गजल के शेर तो अपने आप में गजल की प्रचलित परंपरा से थोड़ा अलग, अजब, तीखे और तंज भरे हैं ही। गुलाम अली ने उन्हें जिस तरह से लहरदार अंदाज में अदा किया है, एक अलग ही समा बन जाता है इसे सुनते।
वॉइस की ये बातें हैं, रंग तो क्या जाने, पूछो तो कभी पी है।
उनके खजाने का एक और नगीना है एक रोमांटिक गजल।
बहारों को चमन याद आ गया है, बहारों को चमन याद आ गया है, मुझे वो गुल बदन याद आ गया है, बहारों को चमन याद आ गया है।
इतने सहज और सुमधुर तरीके से गाते हैं वो कि लगता है कि आपके जीवन में भी बहार लौट आई हो। इस गजल में एक शब्द है बागपन। सुनिए किस तरह से लचकती शाख की तरह किसी का बागपन हौले हौले से लचकता नजर आता है।
लचकती शाख ने जब सर उठाया, लचकती शाख ने जब सर उठाया, किसी का बागपन याद आ गया है, किसी का बागपन याद आ गया है।
खुद उस्ताद का ये कहना है, सुर वैसे जैसे लफ्ज गवाही दें। ये उनके ऊपर बिल्कुल ठीक बैठता है। उनके कहने का मतलब ये है कि सुर इस तरह के लगने चाहिए जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, सुनकर कौन ऐसा सुनने वाला होगा जो लहर के तलफ्फुज में एक लहर सी पैदा कर देने वाले गुलाम अली को चाहने ना लगेगा, या फिर इतनी मुद्दत बाद मिले हो गजल में सिर्फ एक शब्द बाद की अदायगी से मुद्दत की लंबाई ना आंकने लग जाएगा। गजलों की खास बात भी यही है, बोल संगीत के बराबर ही महत्व रखते हैं। लिरिक्स या बोल ही वो धुरी हैं, आवाज और रागदारी जिसका घेरा बनाकर गजल को मुकम्मल शक्ल देते हैं। वाद्य यंत्र मात्र आनुषंगिक कहे जा सकते हैं, इसलिए हारमोनियम और तबला गजल गाने के लिए पर्याप्त हैं। उस्ताद गुलाम अली तबला और हारमोनियम दोनों ही बहुत अच्छे से बजा लेते हैं और उनके लाइव कॉन्सर्ट्स में सरोद, सितार, संतूर आदि महज सहायक की भूमिका में होते हैं। उनकी आवाज राज करती है, वो आवाज जो भारी और मध्यम है, तीखी नहीं, कानों पे पड़ती नहीं, धीरे धीरे उतरती है बहुत बारीक और कोमल कंपन के साथ। वो आवाज जो इतनी रियाज में है कि रोमांस की पुलक को भी उतनी ही शिद्दत से उतार लेती है जितनी गहन निराशा, दर्द और टूटन को। वो आवाज जिसमें इतने उतार चढ़ाव हैं कि रिफत सुल्तान, फैज अहमद फैज, मोमिन मोहसिन अली नकवी, हसरत मोहानी, अकबर इलाहाबादी से आनंद बख्शी जैसे हर रंग और नूर के शायरों के कलाम के साथ न्याय कर सकती है। वो आवाज जो एक ही शेर को बार बार दोहराती है और जितनी बार दोहराती है शेर को नए मायने मिलते जाते हैं, आप हर बार नए एहसास से जकड़ जाते हैं। वो आवाज जो एक ही गजल को अलग अलग मौकों पर अलग-अलग अंदाज में गा सकती है। वो आवाज जिसकी कोई दो रेंडिशन कभी एक जैसी नहीं रही।
जब देखने वाला कोई नहीं, जब देखने वाला कोई नहीं,
बुझ जाओ। मूल गजल में दूसरा मिसरा इस तरह से है, बुझ जाओ तो क्या, गहनाओ तो क्या, पर उस्ताद गहनाओं की जगह जल जाओ रखते हैं। गहनाओ ग्रहण लगने से संबंधित है, शायद सुनने वालों की सहूलियत के लिए। वो सुनने वालों के गायक हैं। किसी ने कभी ये सच ही कहा था कि गुलाम अली वाक्यांशों को अप्रत्याशित तरीके से आसानी से घुमाने में माहिर हैं। उनका तलफ्फुज कमाल है, हर शब्द अपने पूरे अर्थ में इस तरह से आता है कि पूरी गजल आपके सामने परत दर परत खुलती जाती है। वो एक ही शेर को 5 बार अलग अलग अर्थ उद्घाटन के साथ गा सकने में सक्षम है। कभी कभी बहुत कम अशार की गजलें 15-20 मिनट तक चलती हैं और आप बंधे रहते हैं, उबते नहीं। इतनी मुद्दत बाद मिले हो गजल का शेर, तेज हवा ने मुझसे पूछा, देखिए हवा ने नहीं, तेज हवा ने। सिर्फ 5 शब्दों के इस मिश्रे को कॉन्सर्ट में 5 बार गाते हैं और आप इस शेर के जितने मानी हो सकते हैं सबसे गुजर लेते हैं। गुलाम अली श्रोताओं को अनोखे हल्के फुल्के जिंदा दिल अंदाज में शेर के मायने बताते चलते हैं, जिससे सुनने वाले पूरे कार्यक्रम के दौरान उनके साथ हो लेते हैं। जैसे इसी गजल की शुरुआत में वो चलते हुए म्यूजिक के दरमियान कहते हैं, ये गजल ओबेदुल्ला अलीम की है, छोटी बहर की गजल है। अक्सर आपने मुझसे सुनी होगी छोटी बहर की गजलें, ज्यादा गाता हूँ इसलिए कि जरा मुश्किल पसंद सा जहन है, जो ना चीज तैयार हो सके उसे तैयार करने की कोशिश करता हूँ। और मतला यानी पहला शेर गाने के बाद कहते हैं, ये लफ्ज मैंने अपने लिए कहे, मेरे लिए मुश्किल है ये, आसान कर दे अल्लाह पाक तो और अच्छी बात होगी। कितनी विनम्रता और कितनी सादगी, कहा ना सुनने वालों के गायक। बहर जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं उसे छंद या मीटर कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वजन, जिस पर गजल के शेर या मिसरे आधारित होते हैं। छोटी बहर को संगीतबद्ध करना या गाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें बड़ी या मध्यम मीटर की गजलों की तुलना में स्पेस कम मिलता है, लय टूटने का खतरा ज्यादा रहता है। उस्ताद गुलाम अली मुश्किल छोटी बहरें ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे
रहता हूं, मैं भी तेरे जैसा हूं।
उच्चारण की सफाई, शब्दों में अर्थ सघनता और छोटी बहर की वजह से गुलाम अली की गजलों की नकल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप बस उनके पाश में बधे उन्हें सुनते रहते हैं। इतनी सिद्ध हस्ता उस्ताद को कहीं आकाश से टपक कर नहीं मिली, ना ही रातों रात प्राप्त हो गई। खुद उनका मानना है कि यद्यपि गजल गायकी आसान, सुखद और रुचिकर लगती है, पर है ये गायन की सबसे कठिन शैली। कम से कम 15 साल इसे सीखने में लगते हैं, 10 साल तो मौसीकी, तलफ्फुज, जुबान, शायर या लेखक को समझने में, और सबसे बढ़कर परिपक्वता प्राप्त करने में ही लग जाते हैं। गजल बहुत रियाज और प्रशिक्षण मांगती है, और इसे किसी जानकार गुरु से ही सीखना चाहिए। गुलाम अली संगीतज्ञों के परिवार से आते हैं। उनके पिता, जो खुद एक सारंगी वादक रहे, ने ही उनका नाम बड़े गुलाम अली साहब के नाम पर रखा, जिनसे गुलाम अली ने प्रारंभिक शिक्षा भी ग्रहण की और जिनके पटियाले घराने से वो बाद में जुड़ भी गए। उनसे पहली मुलाकात का किस्सा बहुत रोचक है। काबुल से भारत लौटते वक्त गुलाम अली के पिता ने कम उम्र गुलाम अली को उस्ताद बड़े गुलाम अली से मिलवाया और उसे सिखाने की इल्तिजा की। चूंकि उस्ताद बहुत व्यस्त रहते थे तो उन्होंने मना कर दिया। बहुत चिरौरी करने पर उन्होंने छोटे से बालक से कुछ गाकर सुनाने को कहा। कहते हैं उस वक्त बड़े गुलाम अली साहब की गायकी शबाब पर थी और उनके सामने गाने में बड़े से बड़े गायकों के पसीने छूट जाते थे। लेकिन जब अली ने एक ठुमरी सैया बोलो तनिक मोसे रहियो न जाए सुनाई तो बड़े उस्ताद झूम पड़े, उन्हें गले लगा लिया और तुरंत शागिर्द बना लिया। उस दौरान पटियाला घराने में बड़े गुलाम अली साहब के 3 और भाई बरकत अली खां, मुबारक अली खां और अमानत अली खां जैसे शास्त्रीय संगीत के अजीम गायकों का दबदबा था। गुलाम अली को उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक की बारीकियां सिखाई। यही वजह है कि गुलाम अली की गायकी में ख्याल, ध्रुपद, ठुमरी, टप्पा, दादरा जैसे क्लासिकल सेमी क्लासिकल शैलियों की महक है। इसके साथ साथ वो एक शायर जिन्हें सूफी साहब कहते थे के संपर्क में भी आए, जिन्होंने गुलाम अली को गजल की आत्मा तक पहुंचाया, उसके सौंदर्य बोध से परिचित कराया, शेर को उसके मायने और खूबसूरती को बनाए रखते हुए कैसे बोलना है, कहाँ रुकना है, किस जगह पर दबाव देना है, मिसरे को कहाँ से तोड़ना है और कैसे उसे रिपीट करना है जैसी बारीकियां सिखाई।
एक आईना था सो टूट गया, अब खुद से अगर शर्माओ तो क्या।
पाकिस्तान के इस हुनरमंद फनकार ने साल 1960 में रेडियो लाहौर से गाने का सफर शुरू किया। उन्होंने कहीं बताया है कि मुझे वो गाना याद है, वो अहमद नाजिम काजमी की गजल थी, शाम को सुबह चमन याद आए, और इसके लिए मुझे 15 रुपए की बड़ी धनराशि मिली थी। लोगों की प्रतिक्रिया बहुत शानदार थी और उसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस्ताद अपनी गजलों के लिए धुन एवं संगीत खुद ही तैयार करते हैं। राग आधारित तो होती ही हैं ये धुनें, अक्सर उनमें राग का एक वैज्ञानिक मिश्रण भी होता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और गजल के खूबसूरत बोल मिलकर जादू ही कर देते हैं। गुलाम अली ऊंचे सुरों पर भी अपनी पिच पर पूरा नियंत्रण रखते हुए गाते हैं और टोन भी इस तरह से संतुलन में रखते हैं कि ना तो बेसुरे होते हैं, ना ही कहीं आवाज में चुभन महसूस होती है, और सुनने वाले इन बारीकियों का स्वाद भी बखूबी ले पाते हैं। आशा भोसले जी यूं ही उन्हें ईश्वर का चमत्कार नहीं कहती। वो खुद अपनी गायकी का श्रेय रियाज को देते हैं। उनका कहना है, मेरी आवाज रियाज की वजह से परिपक्व हुई है। सिर्फ रियाज ही किसी गायक को बेहतर कर सकता है। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, आपकी आवाज उतनी ही खुलती जाएगी। उनकी गायकी ने उन्हें पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश के साथ साथ अमरीका, इंग्लैंड और मध्य भारत के देशों में रहने वाले दक्षिण एशियाई लोगों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय बनाया है। उनकी एक और अनूठी उपलब्धि है नेपाली भाषा की गजलें। उन्होंने नेपाल के पूर्व राजा महेंद्र वीर विक्रम शाह देव की लिखी नेपाली गजलों को भी अपनी आवाज से सजाया है और हिंदी फिल्मों में उनकी गाई गजलों का तो कहना ही क्या। सैयद फजलुल हक उर्फ मौलाना हसरत मोहानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक, शानदार शायर भी थे। 1921 में पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार उठाने वालों में से मोहानी साहब ने जहां ऊर्जा से भरा हुआ क्रांतिकारी नारा इनकलाब जिंदाबाद हमें दिया, वहीं प्रेम और नॉस्टैल्जिया से लबरेज ये गजल भी दी। ठाट काफी पर आधारित इस गजल को पहली बार गुलाम अली ने अपने अनोखे अंदाज में 1976 में गाया और लोकप्रिय कर दिया। 1982 में फिल्म निकाह में इसका एक छोटा संस्करण गुलाम अली ने ही संगीतकार रवि के लिए गाया, जो उनकी गायकी के सफर में मील का पत्थर साबित हुआ। इस गजल में एक खास किस्म का नॉस्टैल्जिया है, याद है, विसाल के लम्हों की याद है, जुदा होने के लम्हों की याद है। बहुत छोटे छोटे से जीवन के क्षण हैं, बिंब हैं, जिनका असर ताउम्र रह जाता है। प्रेम ऐसा ही होता है, बहुत सूक्ष्म, कभी कभी एकदम अदृश्य, अंदर ही अंदर महसूस होता हुआ सा। गुलाम अली की आवाज की कोमलता इस बारीकी को पकड़ती है। आपके जीवन में ऐसा कभी ना हुआ हो, तब भी आप इस गजल के साथ हंसते हैं, रोते हैं, हाथ मसलते हैं, माथा खुजलाते हैं और सोचते रह जाते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो लम्हे यहाँ इस गजल में आए हैं वो मेरे माजी से नहीं है। हमारी आज की गजल कुछ दिन तो बसो मेरी आंखों में भोपाल में जन्मे और पाकिस्तान में बसे बहुत अच्छे शायर ओबेदुल्ला अलीम की कही हुई है। गजल की परिपाटी के अनुसार ही हर शेर अपने आप में स्वतंत्र है और मुकम्मल अर्थ रखता है। स्वतः स्पष्ट भी है, लेकिन एक थीम है जो इस गजल के अशार लेकर चलते हैं। हालांकि गजल के क्लासिक मापदंडों में इसकी इजाजत नहीं है, फिर भी एक पैटर्न है जिस पर उन्हें क्रमवार रखा जा सकता है। वो थीम है इंतजार, और वो पैटर्न इंतजार की अलग अलग मानसिक अवस्थाओं को दिखाता है। हर आशिक को मिलन का इंतजार रहता है, भले इस मिलन के बाद घाव ही मिले। लंबा इंतजार निराश कर जाता है। बहुत इंतजार के बाद फिर एक ऐसा वक्त आता है जब निराशा एक अजीब सी उदासीनता में, वैराग्य में तब्दील हो जाती है। यही वो लम्हा है जब मिलने बिछड़ने, खुशी और गम के एहसास साथ छोड़ देते हैं, जिंदगी के सारे फलसफे खत्म हो जाते हैं और एक शेर बहुत ध्यान खींचता है। ये वो क्षण है जब महबूब का मिलना भी तोष नहीं दे सकता।
तुम आओ तो क्या, ना आओ तो क्या।
दो और अशार हैं जो इस पैटर्न को मुकम्मल करते हैं। एक वहम है ये दुनिया, इसमें कुछ खो तो क्या और पाओ तो क्या। है यूं भी जिया और यूं भी जिया, जी जाओ तो क्या, मर जाओ तो क्या। जिया का मतलब है नुकसान, हानि। अब तो निराशा भी नहीं बचती। गजल उस उरूज पर पहुंच जाती है जहां न जीने का पता चलता है, न मरने की खबर होती है। है ना आखिरी एहसास। आज के इस दौर में जब संगीत की दुनिया में हंगामेदार रिमिक्स म्यूजिक और तेज आवाजों का एक शोर बरपा हुआ है, इस किस्म की सहज सरल गायकी जिसमें गायक मंद मंद मुस्कान के साथ उन बोलों को गुनगुना रहा हो जिनके गहरे मायने हैं, विचित्र लग सकती है। लेकिन गजल गाने वाले, सुनने समझने वाले इससे भली भांत वाकिफ हैं। सौम्य संगीत के साथ पोएटिक एक्सप्रेशंस, आहा। तो आइए थोड़ा शोर से बचते हैं, दर्द और इंतजार के इस पोएटिक एक्सपीरियंस से गुजरते हैं। यूट्यूब के लिंक से जनाब गुलाम अली साहब की लहरदार आवाज में एक एक शेर को छूते हैं, समझते हैं और महसूस करते हैं।